Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakshanta Vasalimi Matao, Isnevi Venu Aap Sarubandhu. तैतिरीय उपनिषद को लेकर के शांति पाठ रूप मंगलाचरण को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें यह संकेत किया गया सन्नो मित्र शं वरुण सन्नो भवत्तर्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तार भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ये जो प्रार्थना शांति पाठ मंत्र है, इसके अंतर्गत ऋषि जो है प्रार्थना करता हुआ संकेत करता है अपने कल्याण के लिए, और उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए बल को वांछित अर्थात इच्छित होते हुए वह ऐसा प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि हे मित्र, आप जो है हमारा कल्याण करें या हमारे दुर्तों का शमन करें। तो ये संकेत किया जिस पे चर्चा की गई, ऐसे ही वरुण शब्द को लेकर के संकेत किया और आगे संकेत कर रहे हैं सन्नो भवत्तर्यमा। अर्यमा शब्द का प्रयोग किया तो इंद्रिय विशेष के देवताओं के रूप में भी इन्हें ग्रहण किया जाता, वो भी इनके अर्थ हैं। यहां अर्यमा शब्द का क्या अर्थ है तो दो शब्द हैं, अर्य आगे है मा। अर्य शब्द का अर्थ क्या है तो शास्त्र की दृष्टि से री गतौ धातु से अर्य शब्द बनता है, अर्थात ज्ञानार्थक धातु से अर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या सुशिक्षित या ज्ञान या श्रेष्ठ, ये उसके अर्थ है अर्य शब्द। इसी अर्य शब्द से आर्य शब्द बनता है, माने वह अर्य का भाव जिसमें रहे उसे कहते हैं आर्य। माने जो सुसंस्कृत है, जो ज्ञानवान है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम गुणों से जो युक्त है, उसे ही आर्य शब्द से भी कहा जाता है। तो अर्य शब्द का अर्थ हुआ यहां माने श्रेष्ठ या ज्ञान, सुसंस्कृत सुशिक्षित, ये सारे के सारे उसके अर्थ हैं। आगे मां शब्द है, मां शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार मां कहीं निषेधार्थक संस्कृत में भी प्रयोग होता, निषेध के अर्थ में भी प्रयोग होता, और कहीं मां शब्द मां अपने को लेकर के भी कह दिया जाता। तो इस प्रकार से उसके अर्थ हैं, लेकिन यहां मां शब्द का अर्थ है मापना, और माप किससे होता है तो होता है मन से, इसलिए मां शब्द का अर्थ है यहां पर मां मन। तो क्या हुआ अर्य मन, तो अर्यमा शब्द उसी से बनाया। तो अब जो है इसका अर्थ हुआ मने सुसंस्कृत मन या श्रेष्ठ मन अथवा उन्नत मन, प्रागतिक मन, ये सब उसके अर्थ। तो ऐसा जो इन गुणों से विशिष्ट, जो देव विशेष, उस देव विशेष से ही ऋषि प्रार्थना करता है कि आप हमको भी वह प्रगति, वह उन्नति, वह श्रेष्ठता, वह ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा, तो इन गुणों से जो संपन्न देव है, ऐसे उस देव से वह ऋषि प्रार्थना करता है। तो यहां पर अर्यमन शब्द का या अर्यमा शब्द का अर्थ हो गया जहां पर एक सरलता है और जहां पर कुटिलता नहीं है, जहां पर श्रेष्ठता है, कनिष्ठता का जहां पर रूप नहीं है। तो कनिष्ठता श्रेष्ठता का विचार जहां है, सरलता और कुटिलता का निश्चय जहां पर है, प्रागतिक या उन्नति प्रगति और अवनति का निर्णय जहां पर है, ऐसे निर्णय से संपन्न उस देव के लिए संकेत किया कि आप जो है वह शक्ति हमें भी दें जिससे हम एक न्याय को ग्रहण कर सकें, उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है ऋषि संकेत करता है कि सन्नो भवत अर्यमा, हे अर्यमा सन्नो भवतु, न मेरे लिए आप जो है समनकारी हो, अर्थात मेरे अंदर जो कुटिलता है, मेरे अंदर जो अवनति है और मेरे अंदर जो कनिष्ठता है, संकीर्णता है, उसका आप निवर्तन करें, उसका आप समन करें, और इनका समन हो जाएगा तो कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर संकेत किया गया। तो ऐसा जब संकल्प वाला मन होता है, ऐसे संकल्प से युक्त मन होता है, तब वही मन हमारे बुद्धि के अंतर्गत विवेक पैदा करता है। और जब तक मन ऐसे न्याययुक्त प्रागतिक संकल्प वाला नहीं होता है, तब तक जो है हमारी बुद्धि में परिनिष्ठितता नहीं आती। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया, उन्होंने कहा कि भाई बुद्धि परिनिष्ठित कब होगी, तो उसका संकेत करते हुए उन्होंने बतलाया कि बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाने के लिए, बुद्धि को परिनिष्ठित बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन की प्रसन्नता, प्रसन्न चेतसो ह्यासुर बुद्धिर परिवतिष्ठते। जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाती। अब प्रश्न हुआ कि मन की प्रसन्नता क्या, हमने जो कामना की, कामना के अनुसार प्रयत्न किया और प्रयत्न के अनुसार हमें फल मिल गया तो मन प्रसन्न हो गया, कहा ये प्रसन्नता नहीं। तब मन की प्रसन्नता क्या, तब वहां संकेत किया कि मन की प्रसन्नता जो है, जैसे साहित्य के अंतर्गत प्रयोग आता है, अद्य प्रसन्न गंभीरम सरह, आज सरोवर बड़ा प्रसन्न है और गंभीर है। अब सरोवर की गंभीरता क्या है, सरोवर की प्रसन्नता क्या है, तो सरोवर की गंभीरता क्या होगी कि उसमें कोई तरंग नहीं उठ रही, उसमें कोई लहर नहीं उठ रही, ये सरोवर की गंभीरता होगी, ये स्थिरता होगी, उसका जल शांत है, स्थिर है। और उसकी प्रसन्नता क्या होगी, तो अब जब तरंग नहीं उठ रही है और तरंग न उठने से जल में कोई हलचल नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कंपन नहीं है, इसलिए वहां पर जो किनारों में धक्के लगने से जो मिट्टी उठ जाती है वो मिट्टी भी नहीं उठ रही, अर्थात उस मिट्टी से भी रहत है, मल से रहत है, उसका जल स्वच्छ है। तो जैसे उसकी स्वच्छता और स्थिरता, यही उसकी प्रसन्नता और गंभीरता है, वैसे ही मन रूपी सरोवर की, इसको भी हृदय कहते हो, इस हृदय रूपी सरोवर की प्रसन्नता क्या होगी, इसकी गंभीरता क्या होगी। तो यहां पर भी संकेत किया, तो इसकी थोड़ी विलक्षण प्रसन्नता बतला दी, ये नहीं कहा कि इसमें कोई विचार न उठे, तरंग न उठे, ये नहीं कहा, तरंग उठे, लेकिन वह तरंग भी कैसी हो, तो इसके लिए पहले विपरीत तरंगों का निराकरण किया। तो वहां भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आपके जीवन में संकल्प हो, आपके जीवन में अभिकांक्षा हो, लेकिन वो अभिकांक्षा, वो संकल्प कैसा हो, तो संकेत कर दिया राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग और द्वेष से रहित। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्र में भारतीय जो वांग्मय परंपरा है उसमें जो दर्शन शास्त्र है उसमें दुख का हेतु बतलाते हुए एक श्रृंखला की चर्चा की। क्या कहा? कि जब जीवन में अज्ञान आता है, जीवन में भ्रम आता है, जीवन में भूल आती है, और जब भ्रम आता है, भूल आता है, अज्ञान आता है, तो उस भ्रम को लेकर के होने वाला जो अहम, भूल को लेकर के होने वाला जो अहम, और जब भूल से होने वाला जो अहम है, भ्रमित जो अहम है, वो अहम क्या करता है? तो मम को उदित कर देता। अहम से मम भाव आ जाता है, और जहां पर अहम मम आया तो वहीं पर क्या आ जाता? का इच्छा पैदा हो जाती, कामनाएं हो जाती, और जहां कामना आ जाती है तो वहीं कामना आने पर ही राग और द्वेष भी आ जाते। और जब राग और द्वेष आ जाते हैं तो राग द्वेष के आने पर संबंध बन जाते, कहीं शत्रु का संबंध, कहीं मित्र का संबंध, तो संबंध बन जाते। और वो संबंध कैसे हैं? तो अयोग्य संबंध, जो योग्य नहीं है, ऐसे अयोग्य संबंध बनते हैं। और जब अयोग्य संबंध बन जाते हैं तो वो अयोग्य संबंध ही हमारे लिए दुख के हेतु बन जाते, और वही अयोग्य संबंध हमारे जन्म और मरण के हेतु बन जाते। ये परंपरा है, इसलिए भगवान ने भी संकेत कर दिया, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय ईश्वर, राग द्वेष से रहित होकर के और फिर मन संकल्प करे, और वो मन जो संकल्प करेगा तो जहां राग और द्वेष नहीं होगा तो उस मन में जो संकल्प होगा वो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, और वो गंभीर होगा, उसमें एक स्थिरता होगी, स्थायित्व तो होगा, ऐसा संकल्प होगा। क्योंकि निर्मल जल में क्या होता? बिंब का है प्रतिबिंब या बिंब का रूप स्पष्ट दिखाई दे जाता, तो उसका संकल्प होगा। तो इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं, तो ऐसा जो मन और ऐसे मन वाले से ही प्रार्थना करते, ऐसे मन का भी जो मूल देव है, ऐसे मन को धारण करने वाला है, ऐसे उस देव से प्रार्थना की कि आप जो है मेरा समन करें, अर्थात ही हमारे अंदर ये कुटिलता आदि जो है उसका निराकरण करें, हमारे अंदर जो अवनति कनिष्ठता संकीर्णता आदि है उसका निराकरण करें। और जब इस प्रकार से उनका निराकरण करेंगे तो हमारे अंतर्गत शुद्ध संकल्प वाला मन होगा, एक निर्णयात्मक न्यायात्मक मन होगा। जो मन संकल्प लेगा वो न्याय से युक्त होगा, जो मन संकल्प लेगा वो उन्नति देने वाला होगा, जो मन संकल्प लेगा वो ज्ञान देने वाला होगा। तो इस प्रकार का जब संकल्प आएगा तो उस संकल्प से बुद्धि सद असद का विवेक करने में समर्थ होगी, तो विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी। और जब विवेक शालिनी बुद्धि प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी, निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी, और वो प्रगति हमारी लौकिक भी होगी और हमारी पारलौकिक भी प्रगति होगी। इसलिए यहां संकेत किया, सन्नो भवत् त्वर्यमा न अर्यमः न संभवतु। हे अर्यमन, हे अर्यमा देव, आप हमारे लिए क्या हो? कहा हमारे दुरितों को दूर करने वाले हो, हमारा समन करने वाले। समन किसका करना? दुरितों का, जो हमारे लिए अन्याय है, जो हमारे लिए अवनति को देने वाला, ऐसे गुण धर्मों को हमारे में से दूर कर दो। और उन गुणधर्मों को जब दूर कर दोगे तो वो गुणधर्म हमारे में फिर आ जाएंगे जिनके द्वारा हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी, और जब उन्नति प्रगति होगी तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो कल्याण स्वरूप हम हो जाएंगे। अब ये तो इसका भावार्थ है, अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण सुना, क्योंकि ग्रीस भाई कल कह रहे थोड़ा सरल, तो सरल जो है आख्यानों से उदाहरणों से ही होता है, क्योंकि नियम भी है। हमारे यहां शिक्षा के तीन रूप बतलाए, या जिसे उपदेश कहो शिक्षा कहो, आगे शिक्षा की चर्चा भी आए, उसके तीन रूप हैं। एक तो प्रभु संबित शिक्षा होती है, एक मित्र संबित शिक्षा होती है, और एक कांता संबित शिक्षा होती है। तीन प्रकार की शिक्षाओं की हमारे यहां परंपरा है। अब जो है प्रभु संबित शिक्षा क्या है? प्रभु संबित शिक्षा यह है, जैसे प्रभु माने स्वामी, प्रभु माने क्या है? स्वामी, मालिक है। तो जैसे किसी फैक्ट्री के अंतर्गत और वहां पर जो कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों को आदेश देता है कौन? फैक्ट्री का मालिक, और उनसे कहता है कि आपको है इस कच्चे माल को तैयार करना, दूसरे से कहता आपको इसे परिपक्व बनाना। अब जब ये कहता है तो क्या नौकर ये कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, या उसमें कोई संशोधन करेगा परिवर्तन करेगा? यदि संशोधन परिवर्तन करेगा उसे नहीं करेगा तो वहां फैक्ट्री चलेगी नहीं, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मालिक उसे क्यों रखेगा, है ना? तो वहां पर नियम क्या है कि जैसा मालिक कह रहा है वैसा उस कर्मचारी को करना, उसमें उसे ऊहा पोह नहीं करनी, उसमें उसे नू नच नहीं करना, उसमें उसे संशोधन नहीं करना। इसे कहते हैं प्रभु संबित शिक्षा या प्रभु संबित उपदेश। ये कौन सा उपदेश है, कौन सी शिक्षा है? तो इसी को संकेत किया गया कि वेद से होने वाली जो शिक्षा है वो प्रभु संबित शिक्षा कहलाती है। वेद के वाक्यों में हम जो है नू और नच कर सकते नहीं, जैसा वेद कहता है वैसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें नू नच करने की सामर्थ्य, ऊहा पोह करने की सामर्थ्य नहीं है। तो वेद से होने वाली जो वैदिक शिक्षा है वो है प्रभु संबित शिक्षा। अच्छा, दूसरी शिक्षा बतलाई मित्र संबित शिक्षा। मित्र संबित शिक्षा क्या है? तो आप जैसे जानते हो दो मित्र हैं, तो एक मित्र संकल्प लेकर के कुछ कहता है तो उसका मित्र जो है देखता है कि इसमें कुछ न्यूनता है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए वो उसको प्रेरित करता, वो उसमें प्रश्न भी करता, तर्क भी करता कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, और इस प्रकार से मित्र क्या करता है, संशोधन करता है, परिवर्धन करने की कोशिश करता है, और दोनों के वाद प्रतिवाद के द्वारा एक सिद्धांत निकल करके सामने आता है। इसे कहते हैं मित्र संबित शिक्षा। तो जितने भी हमारी स्मृतियां हैं या स्मृति ग्रंथ हैं वो सब क्या है? वो मित्र संबित उपदेश। स्मृतियों को मित्र संबित उपदेश या मित्र संबित शिक्षा का, इसलिए आप गीता में देखते है ना क्या है, वहां प्रश्न भी उठाया गया और उसका उत्तर भी दिया गया, और प्रश्न उत्तर पूर्वक एक सिद्धांत को निकाल करके दिया और समाधान भी किया गया, संवर्धन परिवर्तन आदि देखा, जितनी भी श्रुतियां हैं उनमें सब ये चर्चा की। तो ये तो हो गया मित्र संबित उपदेश, परस्पर का संवाद है जहां। और तीसरी शिक्षा जो हमारे यहां बतलाई गई वह है कांता संबित शिक्षा। ये कांता संबित शिक्षा क्या? तो कांता शब्द का अर्थ आप जानते हो, है ना? ऐसे तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां प्रसंग के अनुसार जो अर्थ है उसी को ले। तो कांता शब्द का अर्थ है सती साध्वी जो अपनी धर्म पत्नी, उसे क्या कहते हो? कांता शब्द से कहते। तो कांता संबित शिक्षा क्या है? तो जैसे आप जो है कयादु के प्रसंग को सुनते हो, है ना, हिरण्यकशिपु को एक है न्यायगत संकल्प कराने में जो है सहयोगी थी तो कौन थी? कयादु थी। तो सती साध्वी स्त्री क्या करती है, यदि उसका पति अन्याय के मार्ग में, अन्याय के संकल्प में जा रहा है तो उसे न्याय पर लाने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए वह क्या करती है, पहले वह उसकी सेवा करती, जैसे कयादु ने सेवा, और सेवा के द्वारा उसे प्रसन्न करती। प्रसन्न करने का मतलब उसे अपनी तरफ अभिमुख करना, और जब अभिमुख कर लेती है तो जो सिद्धांत है, जो सत्य है, वो उसके सामने प्रस्तुत करती। और जब व्यक्ति अभिमुख होता है तो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता। तो जितने भी इतिहास, पुराण, काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि और साहित्य, जितने भी ग्रंथ हैं, नाटक आदि भी, ये सब क्या है, ये कांता सम्मित शिक्षा है। क्योंकि हम जब नाटक आदि करते हैं, या जो है हम आख्यान उपाख्यान इतिहास की चर्चा करते हैं, तो वह सरलता से हमारी समझ में आ जाती है, और व्यक्ति उधर अभिमुख हो जाता है। तो सारे शास्त्रों में ये नियम है कि उनके द्वारा वहीं पर सिद्धांत भी दे दिया जाता। तो आख्यान केवल आख्यान के लिए नहीं, आख्यान किस लिए है, अभिमुखीकरण करने के लिए, और फिर जो शास्त्र का सिद्धांत है वो समझाने के लिए, उस सिद्धांत को दे देते हैं। तो ये जितने ग्रंथ हैं वो सब क्या है, कांता सम्मित शिक्षा। तो अब श्रुति है तो ये तो वेद से होने वाली, लेकिन इसमें भी उपनिषदों को थोड़ा सरस बनाने के लिए इसमें प्रश्न उत्तर की चर्चा थोड़ी कर दी गई। तो अब वेद तो है वो सीधी सीधी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए जो है वो हम उसमें हमारे अंदर संशय हो जाता तो वो बना रहता, जल्दी निवृत्त नहीं हो पाता, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन जहां मित्रता संबंधी बात आ जाती वहां समझ में आ जाती, और जहां पुराण इतिहास को लेकर के बात आ जाती तो जल्दी समझ में आ जाती। तो जितने भी आख्यान आदि इतिहास पुराण आदि के उदाहरण के ही रूप में दिए जाते हैं, और उदाहरण एक अंश की पुष्टि करता, सर्वांश की पुष्टि नहीं करता, एक अंश की पुष्टि करता। तो यहां पर भी उसी को लेकर के चर्चा करें। यहां पर जो शब्द बतलाया अर्यमा, तो अर्यमा शब्द का अर्थ बतला दिया, श्रेष्ठ मन कहो, श्रेष्ठ मन या प्रागतिक मन या उन्नत मन या ज्ञान संपन्न मन, ज्ञान वाले संकल्प वाला मन, उसे कहते हैं अर्यमा। ऐसे अर्यमा से प्रार्थना की तो उससे प्रार्थना करोगे तो वो ज्ञान संस्कृतता है, सुशिक्षितता तुम्हारे में आएगी, जिसके द्वारा तुम सद असद का विवेक करने में समर्थ होगे, न्याय के मार्ग को जानने में समर्थ होगे, अर्थात सुख के मार्ग को जानने में समर्थ होगे। तो ऐसा संकेत किया, तो ऐसे उससे प्रश्न किया। तो यहां पर संकेत अब ये कर रहे, ये कब आता है, तो जब हम राग द्वेष आदि से रहित जो गीता की चर्चा की, मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन में शुद्ध संकल्प होता है, शुद्ध संकल्प से बुद्धि परिनिष्ठित होती है, बुद्धि परिनिष्ठित होती है तो उसमें जो है एक सद तत्व की ही जो है निश्चयता आती है, मैंने विवेक आता उसमें। और जब विवेक आता है, ऐसे बुद्धि के विवेक से हमें वह बल प्राप्त होता है कि जिससे हम अपने कल्याण को प्राप्त। उदाहरण के लिए इसी संबंध में उदाहरण, एक टापू, उस टापू पर जो जनता रहती थी उसका एक राजा भी था। उस टापू पर रहने वाली जनता की प्रणाली कुछ विलक्षण थी, क्योंकि राजाओं के यहां जैसे राजा हुआ तो उसकी आगे संतति आने वाली क्रम से राजा बना दी जाती, प्रजातंत्र में जो है चयन की प्रक्रिया होती। लेकिन वहां पर राजतंत्र भी नहीं था, एक तरह से प्रजातंत्र तो था लेकिन उसकी चयन प्रक्रिया बड़ी विलक्षण थी। वो चयन प्रक्रिया क्या थी, वहां की जनता मिलकर की और राजा का चयन करती थी, लेकिन चयन करती थी लेकिन उनका नियम क्या था, उनका नियम बड़ा विलक्षण था। उस टापू पर एक वर्ष से अधिक कोई राजा राज्य नहीं करता, वो सारी जनता एक वर्ष तक राजा बनाती थी और उसको जो है परिवर्तित कर देती थी और दूसरा राजा बिठा देती। लेकिन एक और विलक्षण बात थी, वो विलक्षण बात क्या थी, जिसे एक वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, एक वर्ष तक तो वो अपना राज्य चलाता था, उससे कोई कुछ नहीं कहता था, उसकी बातों को स्वीकार करते थे, लेकिन एक वर्ष के बाद वह जनता जब दूसरे राजा का चयन करती थी तो प्रक्रिया उनकी क्या थी? वो जो जिस राजा को उन्होंने पहले बनाया था उसे पालकी पर बिठाते थे और पालकी पर बिठा करके सभी लोग मिलकर के, और जिसे नया राजा बनाते थे उसे भी साथ ले लेते थे और ले जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचते थे। और समुद्र के किनारे पहुंच करके फिर क्या करते थे? उससे जो भी चाबियां या जो भी वही खाते आदि थे राज्य का, जो भी तंत्र था, वो जिसे नया राजा बनाते थे उसे दिलवा देते थे और उसको नौका में बैठा करके और गहरे जल में ले जाते थे। जहां जल गहरा होता था वहां ले जाते थे और वहां ले जा करके उसको वहीं गहरे जल में डुबा देते थे और गहरे जल में डुबा देते थे और उसे किसी को निकालने भी नहीं देते थे और उसको वहीं छोड़, जब निकालने नहीं दोगे तो किसका क्या होगा। और आकर के जो नया राजा था तो शंखवेरी नादाद के साथ में उसे जो है लाते थे और उसे सिंहासन पर अभिषिक्त कर देते थे। ये प्रक्रिया थी। अब जो है वहां पर जो है जब राजा बनने की बात आती थी तो कोई राजा बनना नहीं चाहता और आपस में झगड़ा होता था तो लोग भी गाली देते थे। क्या देते? किसे राजा बना दिया जाए, ये गाली भी देते। अब ये प्रक्रिया वहां चलती थी, ऐसा चलता रहा। एक बार एक जो है राजा का चयन करने के लिए उन्होंने देखा किसको बनाया जाए, तो कुछ वर्षों पहले ही उस टापू पर वह व्यक्ति आया था जिसका नाम था बुध सिंह। उस बुध सिंह को उन्होंने चयन किया, जैसा नाम था वैसे गुण वाला था, है ना, बोध से संपन्न था, ये नाम भी उसका था बुध सिंह, अर्थात बुद्धिमान था। तो परिवार वाले जो है उसको बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन जब उसको उस घर से उठाया गया तो सारा परिवार दुखी हो गया।